सीमा पर तनाव घटाने के लिए भारत और चीन बातचीत का सहारा ले रहे हैं। गुरुवार को भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच इंडोनेशिया के बाली में एक बैठक हुई और इस दौरान सीमा विवाद सहित द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बातचीत भी हुई। इस बीच चीन ने तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को लेकर भारत से अपनी आपत्ति जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दलाई लामा के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें बधाई दी थी। इसको लेकर चीन ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची चीनी आपत्ति को खारिज करते हुए कहते हैं,
Let me give some background to it. I think Prime Minister did speak to His Holiness last year also. It has been the consistent policy of the government to treat His Holiness the Dalai Lama as an honored guest in India, a respected religious leader who enjoys a large following in India. And His Holiness is accorded due courtesies and freedom to conduct his religious and spiritual activities. His Holiness's birthday is celebrated by many of his followers in India and abroad. The birthday greetings by Honorable Prime Minister to His Holiness on his 87th birthday yesterday should be seen in this overall context.
Media reports के अनुसार ऑस्ट्रेलियाई सेना के एक सिख शिष्टमंडल को खालिस्तान समर्थक कार्यक्रम में देखा गया है। इस मुद्दे को भारत ने ऑस्ट्रेलिया की सरकार के समक्ष उठाया है। अरिंदम बागची इस संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहते हैं,
ऑस्ट्रेलिया ने स्पेसिफिकली एक हमारे पास ज्ञात हुआ था कि ऐसा हुआ है। हमने ऑस्ट्रेलिया की सरकार से ये मामला रेज किया है और मुझे और डिटेल्स मेरे पास है नहीं शेयर करने के लिए, पर हमने ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से ये टिकअप कर रखा है। हमने कुछ और रिपोर्ट भी देखे थे यूके के बारे में, तो यूके में नहीं था, वो और कहीं था, पर ये ऑस्ट्रेलिया में कुछ उनके सोल्जर्स का था, उसमें बातचीत चल रही है।
और अब चर्चा घरेलू राजनीति की। महाराष्ट्र में शिवसेना और बाल ठाकरे की विरासत पर कब्जे की लड़ाई जारी है। बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर पकड़ कमजोर हुई है। उद्धव ठाकरे से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे न केवल मुख्यमंत्री बन गए हैं, बल्कि अब शिवसेना पर कब्जे की तैयारी कर रहे हैं। ठाणे नगर निगम के 67 में से 66 पूर्व पार्षद एकनाथ गुट के साथ मिल चुके हैं, जो उद्धव ठाकरे के लिए बड़े झटके से कम नहीं है। इसके अलावा लोकसभा के कई सांसद एकनाथ गुट में शामिल हो सकते हैं, ऐसी आशंका है। इस आशंका को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक को बदल दिया है। महाराष्ट्र में जारी उठापटक के पीछे केंद्र सरकार और भाजपा की भूमिका मानी जा रही है। इसको लेकर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा कहते हैं,
चुनी हुई प्रदेश की सरकारों को गिराना, हमने देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ, उसके पहले हमने देखा था कर्नाटक में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, गोवा, मेघालय, कई राज्यों में चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया गया। और वो नहीं है कि अचानक लोगों को बुद्धि आ गई। महाराष्ट्र में जो शिवसेना के विधायक थे 2.5 साल के बाद अचानक बोधि ट्री के नीचे बैठे और उनको ज्ञान उनके मन में प्रस्फुटित हो गया। ऐसा नहीं हुआ, हम सब जानते हैं कि क्या खेल हुआ। तो अगर इस प्रकार की चीज होती है तो राष्ट्रपति का कर्तव्य बनता है, जिसका मैं निर्वहन करूंगा, कि भारत सरकार को रोका जाए ऐसा करने से।
आपको बता दें कि कई विपक्षी दलों ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद के चुनाव में अपना समर्थन दिया है। यशवंत सिन्हा देश में विवेकशील राष्ट्रपति की वकालत करते हुए कहते हैं,
ऐसा लगता है कि हुकूमत में बैठे हुए लोग जो हैं, वो चाहते हैं कि समाज बटे, क्योंकि एक बटे हुए समाज से उनको यह आशा पैदा होती है कि उनको वोट मिल जाएगा। ये वोट की राजनीति हम लोग कहां तक ले जाना चाहते हैं, किस हद तक ले जाना चाहते हैं, और देश की चिंता क्या जरा भी नहीं करेंगे वोट की राजनीति के सामने। तो जो मैं आपसे कह रहा था कि राष्ट्रपति का चुनाव बहुत असाधारण परिस्थिति में हो रहा है, तो मेरा मतलब यही था कि जो भी व्यक्ति, और दो ही व्यक्ति हैं हमने साथ में, जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति भवन में जाएगा उसको मोर देन एवर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ेगा। समाज का सांप्रदायिक ढंग से बंटवारा हो रहा है, कम्युनल पोलराइजेशन, उसको रोकने का प्रयास करूंगा। मैं आपसे वादा करके जाना चाहता हूं यहां पर कि आई शैल डिफेंड द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच।
और अब चर्चा नई शिक्षा नीति की, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदों से भरे हुए हैं। गुरुवार को वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम में शिक्षाविदों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शिक्षा को 21वीं सदी के विचारों से जोड़ना है।
साथियों, आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल आधार शिक्षा को संकुचित सोच के दायरे से बाहर निकालना और उसे 21वीं सदी के आधुनिक विचारों से जोड़ना है। हमारे देश में मेधा की कभी कोई कमी नहीं रही है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे ऐसी व्यवस्था बनाकर दी गई थी जिसमें पढ़ाई का मतलब केवल और केवल नौकरी ही माना जाने लगा था।
अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को भारत के मूल स्वभाव के विपरीत बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं,
शिक्षा में ये विकार गुलामी के कालखंड में अंग्रेजों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने लिए एक सेवक वर्ग तैयार करने के लिए किया था। आजादी के बाद इसमें थोड़ा बहुत बदलाव हुआ भी, लेकिन बहुत सारा बदलाव रह गया। अब अंग्रेजों की बनाई व्यवस्था कभी भी भारत के मूल स्वभाव का हिस्सा नहीं थी और न हो सकती है।
और अंत में थोड़ी चर्चा मौसम की। देश के कई राज्यों में मानसून सक्रिय हो चुका है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते जनजीवन पर असर पड़ रहा है। महाराष्ट्र और गुजरात के कई इलाकों के लिए मौसम विभाग ने रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।